places, beginning with Rabo. Rabo is the Janmasthali, from the birthplace of Srimati Radhika, who is Mahabhav Swarup, the embodiment of the highest frame. She was Vrishabhanu Maharaj. He went to the Jamuna, very near to his house there, and he found a very beautiful baby upon 100 petal lotus and put her home and put her in the lap of Kirtanamaya. So Radhika appeared there, and Krishna, he appeared in Gokul. We have heard how Nag Rishi, after seeing Krishna's birth festival, he was wandering here and there, and gradually he came to Rao and had the darshan of Srimati Radhika. In some couples, in other days of Lord Brahma, then Radhika takes her birth in Varsana. But in this particular kalpa, Srimati Radhika appears in Rabu. But we see that Krishna, in every kalpa, he appears in the same place, where? Gokul Mahavan. We never hear, it's not written in Shastra anywhere, that Krishna has ever appeared in Nandagam. But Radhika, she has appeared sometimes in Varsana, sometimes in Rabu. So in Shastra is stated, Kalpa Gaidishu Harikata Svabha. That's in different kalpas, we see that pastimes are different, and therefore we hear different types of Harikata. They're not contradictory, but they're describing different leaders in different ages. So afterwards, devotees, they went to Brahmanda Ghat. There we heard how Nanda Maharaj, he used to take Krishna and Balaram here when they were children to bathe in the Jamuna. And we heard how the boys, small coward boys, they were playing a trick on Krishna and saying, how can you be the son of Mother Yashoda because you're so black and your brother is white? So Krishna was crying and went to and complained to his mother. And to pacify him, Mother Yashoda took a vow in front of Lord Narayan, the Shila of Lord Narayan, that, oh, you have definitely come from my womb, you are certainly my son. And then Krishna was pacified. In this place, the boys, they went and complained to Mother Yashoda that Krishna was eating soil. So Mother Yashoda, she was annoyed, and she quickly came and demanded to look inside Krishna's mouth. And there she saw the entire universe, and she also saw herself there. So upon seeing this, she became bewildered and thought that her son maybe owned by a ghost or anything. So to protect him, she called the brahmanas and performed the Abhishekha of Krishna with cow dung and cow urine. And then she was pacified. So then the devotees went to Gokul. In Gokul there are many pastime places. The Yamalajun Bhanjan Leela Stali, the place where Krishna delivered the Yamalajun trees. Nearby is Nandakup. Also the appearance place of Yogamaya, the place where Krishna liberated Shakatasura and the Trinavarta, the place of Krishna Balaram's Nansanskara, the place of Damodara Leela, Srila Sanatana Goswami's Bhajan Stali, the place where Krishna's Jata Karma was performed. Nearby from Mandagat, there is a place, Chintaharan Mahadev, also. So, in the house of Nanda Maharaj, there are 84 huge pillars, and nearby are the houses of Nanda Maharaj's brothers, such as Upananda, Abhinanda, and others. Close by to that temple, there are the deities of Rohini Maya and Vasudev Maharaj. Vasudev Maharaj also came to Gokul Mahavan, and he brought Krishna there and exchanged him for the girl who had taken birth from the womb of Mother Yashoda. Then devotees, they went to Dalji. So many people think that Dalji is Baldev Prabhu's birthplace. This is incorrect. Baldev Prabhu appeared in Gokul Mahavan, in the same place where Krishna appeared, but some days earlier, 15 days earlier. So Baldev, he is the Adhishtha Deva of the forests on the eastern side of the Jamuna. There are five Pradhan, or prominent forests on the eastern side of the Jamuna. Badravan, Velvan, Vandiravan, Lohavan, and Mahagan. And there are some Upagans there also, such as Nagan. So, except for Gandhirvan, where there is a prominence of Srimati Radhika and the Lila of Sridhar Ras, in the other forests on that side of the Jumna, Baldev Prabhu is added to the village of those places, and there's prominence of Krishna's cow-raising pastimes with his friends. So in Dalji, in this town, there's a deity of Baldev Prabhu. And this deity was established 5,000 years ago by the great grandson of Shri Krishna, that is Vajrana. So also in that temple, not openly, not next to Baldev Prabhu, but hidden in a corner, there is a deity of Revati. So sometimes in Rajamandal you see deities of Baldev and Revati side by side. But this should not be, this worship is not authentic, because Revati did not perform pastimes in Rajamandal with Balaram Prabhu. Balaram left Rajamandal before the time of his marriage. So if you worship Baldev with Ishakti Revati in Rajamandal, then it will be Rasavas. So Srila Gurudev commented that Vajranav has established the temple of Dalji, Baldev is there, but Gurudev is of the opinion that Vajranav would not have established Revati there and in the same temple because of Rasavas Dosha.
A question has come. As per the first sloka of Manasiksha, Sujan should be considered Madhyam Bhagavat. However, what if the Sujan is Siddha in their Bhajan Sadhan? Are they still to be considered Madhyam? Don't it depend on the level of the Bhajan one as that? Sujan. What is Sujan? Charo Vaishnava Sampradayo aur unki shakhaon ke ashrit jan. Nimbarka, Nimbaditya, Vishnu Swami, Ramanu, Madhvacharya ityadi aur unke anugat jan. ब्रज में वास करते हैं किंतु स्वरूपता वास नहीं करते. दिस इज द पॉइंट. वे स्वरूपता वहां नहीं वास करते. शरीर से ब्रज वास करने पर भी ब्रज के भाव से, सख्य भाव से, उन्नत उज्जवल गोपी भाव से, वात्सल्य भाव से वो नहीं सेवा करते कृष्ण की. इसलिए वे जुगल की अनुरागमयी सेवा नहीं करते. उनको यहाँ पर सुजन कहा गया है. उनके प्रति हेयता दृष्टि छोड़ करके श्रद्धा करनी चाहिए. मध्यम भागवत है. रामानुज को, मध्वाचार्य को, विष्णु स्वामी को सिद्ध भागवत कहा जाता है. वो सिद्ध ही हैं. किनमें से रामानुज सिद्ध होने पर भी वात्सल्य से करेंगे कृष्ण का, या उन्नत उज्जवल गोपी भाव से करेंगे, ना कभी वो नहीं कर सकते. इसलिए भागवत है सिद्ध होने पर भी, जब तक शरीर है तब तक भागवत अभी परिकृत हुए नहीं है. इसलिए शरीर है और उसमें सिद्ध हैं, ठीक है, किंतु अपने भाव में सिद्ध हैं. ब्रज के भावों से उनका कोई भी संबंध नहीं है. इसलिए उन लोगों को मध्यम भागवत ही मानना पड़ता है. यू शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश.
सो आफ्टर हियरिंग यस्टरडेज़ लेक्चर, the question was posed to Srila Gurudev. We heard yesterday that Kostalesu Sujane Bhusuragane. One should have give up all pride and have unprecedented attachment to Kostalesu. It means the residence of Brahma. such as the associates of Radha and Krishna, and also those associates who come in this world with Chaitanya Mahaprabhu, and the followers of those, the associates of Mahaprabhu, such as Rupa Goswami and others, they are called the Paramahamsa. Then the Sujan are the reverse to the Vaishnavas of other sampradayas, the followers, the Ashrityan of Madhvacharya, Ramanujacharya, Nimaditya, and Vishnu Swami. They have to be considered Madhyam Bhagavat. So now the question comes. If a person in another sampradaya has attained siddhi, perfection, and they have fully realized, then why should they be considered Madhyam Bhagavatam? Surely they are Uttam Adhikari, so they should be considered Uttam Bhagavatam? This question may come. What will you reply to this? Srila Gurudev explained that there may be Siddha in their own mood, and they may be residing in Braj, but they are not residing in Braj Swarupata. That means in their Swarup. By Swarup, they are not residing in Braj. Physically, in their body, they are residing in Braj. But internally, by their mood, they cannot touch the Chinmaya Dhamma Braj. Parakya Bhava Jahe Prajate Prachar. There in Braja, this Unnata Ujjwala Rasa. This is flowing everywhere in the Chinmaya Dhamma of Braja. So, Ramanujacharya, Nimadhicha, and others, and those who are in Braja following them, they may be Siddha. They may be perfect. But they are Siddha, they are perfect in their own mood. They are not perfect in the mood of the transcendental Chinmaya Braja. Therefore, they can never engage in the Unnat Ujjwala Upasana, the service of Radha and Krishna according to the actual mood of transcendental Braj, that is the Parakya Madhurya Rasa Bhakti. So, though they are perfect in their own mood, they don't have Braja Bhava. So, in comparison to those who are called Ghostala Ishu, that means one should have attachment for the residents of Ghosta. In comparison to the real residents of Ghosta, such as the associates of Radha and Krishna and Agha Swamis, they have been considered Madhyam Bhagavat.
Any doubt more? Tumhara kuch hai? Bolo. अब विभूषण गण का पीछे पहले इसमें कोई डाउट है?
इसमें डाउट ये है कि ये हमारे संप्रदाय की दृष्टि से मध्यम भागवत है, ये ठीक है, किंतु
तुम कौन सा संप्रदाय में है? अतः तो बस इसी से मान लो।
दूसरा प्रश्न ये है कि जो भूषण गण है, जैसे अत्रि आदि ऋषि या दुर्वासा आदि ऋषि, उनको किस प्रकार से कनिष्ठ भागवत
वो पीछे पूछना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न ही नहीं आ रहा है। ओ तुंग विद्या, वेर इज तुंग विद्या? एनी मोर डाउट?
This is true. So, if we will say that they are Madhyam Bhagavat, this is only a relative opinion from those who are situated in the sampradaya of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Sampradaya. This is their relative opinion. So, are they really the Madhyam Bhagavat or Uttam Bhagavat? So, we have replied by saying, what sampradaya are you in? So, if you are in the following group of Goswami, then you have to see according to the vision of the followers of Rupa Goswami, and this is the correct vision.
Mana Shiksha. Na dharmam. Sutaguna niruktam kilukuru. Braje Radha Krishna prachura paricharyam ihatanu. सचि सुनुंग नंदीश्वर पतिसुतत्व गुरु गरम मुकुंद पृष्ठत्व स्मर परम जस्रम ननु मन। हे प्यारे मन, वेद शास्त्र इत्यादि श्रुतियों में जो धर्म और अधर्म कहे गए हैं, जो धर्म पुण्यमय या पापमय है, कुछ मत करो, बल्कि श्रुतियों ने चरम सिद्धांत के रूप में जिनको सर्व उपादेय, चरम उपास्य और सर्वपरि तत्व राधा कृष्ण जुगल की जो कहा है, उस राधा कृष्ण जुगल की प्रेममयी प्रचुर परिचर्या करो, सेवा करो। और सब वेद श्रुतियों में जो कुछ कहे गए हैं धर्म अधर्म सब छोड़ो और राधा कृष्ण जुगल की अनुरागमयी सेवा करो। राधा भाव कांति दूत सुबलित सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु जी को नंदन से अभिन्न तथा गुरुदेव को मुकुंद का अत्यंत प्रिय जानकर उनका स्मरण करो। अब इसका भजन दर्पण, भक्ति विनोद ठाकुर के विचार। यहां पर तीन प्रश्न लिए गए हैं। पहले श्लोक में पूर्ण रूप से दंभ को छोड़कर, कपटता इत्यादि को छोड़कर, दंभ को छोड़कर जुगल सरकार की, जुगल किशोर की अनन्य सेवा की जो बात कही गई है, उसमें शंकाएं उठती हैं। यदि संपूर्ण रूप से दंभ छोड़ दिया जाए और अनन्य रूप से राधा कृष्ण का भजन किया जाए तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा? पहली बात, उसको कुछ कुछ ग्रहण किए बिना जीविका का निर्वाह नहीं होगा, निर्वाह नहीं होगा तो भजन भी नहीं होगा। तो ये जीवन का निर्वाह कैसे होगा? क्योंकि नित्य नैमित्य कर्म को ही धर्म कहते हैं। नित्य और नैमित्य जो हमारे लिए कर्म है रूप धर्म, और कहीं कहीं अधर्म का आश्रय लिए बिना, अधर्म का भी आश्रय लेना पड़ता है, इसके बिना जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। और दूसरी शंका है, यदि राधा कृष्ण जुगल का अनन्य भजन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में ग्रहण किया जाए? क्योंकि महाप्रभु भी उपास्य के रूप में एक ही साथ में भजन करते हैं तो दो उपास्य हो जाते हैं, तो भजन अनन्य नहीं रहा, कृष्ण का भी रहा और महाप्रभु का हुआ। और तीसरी शंका यह है, गुरुदेव का स्मरण किस रूप में करें? उस लीला में जो हम स्मरण करते हैं अष्टकाली लीला इत्यादि, उस समय में गुरुदेव की किस भावना से किया जाए? इनका समाधान कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। श्रुतियों में जो धर्म अधर्म कहा गया, कुछ भी मत करो, राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करो। श्रुति और स्मृतियों इत्यादि ग्रंथ में धर्म अधर्म का निरूपण किया गया है। मनुष्य जो कुछ भी करता है या तो धर्म या अधर्म होगा। धर्म धर्म का यदि हम पूर्ण रूप से परित्याग कर दें, एक क्षण के लिए भी जीवित रहना मुश्किल है। अतः यहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का निषेध नहीं किया, सबका नहीं किया। जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञ और एक विज्ञ, एक मूर्ख नहीं जानने वाले अज्ञान और दूसरा जानने वाले। अज्ञ पुरुष शासन के बिना, अनुशासन के बिना कोई भी काम नहीं करता, शास्त्र के शासन में, गुरु के, वैष्णव के साथ, उसी में कर सकता है। और यदि करता है कुछ उनके अनुगत्य को छोड़ करके तो अमंगल हो जाता है। ऐसे ही अज्ञ पुरुषों के कल्याण के लिए वेदों ने और तद अनुगामी शास्त्रों ने स्मृतियों ने धर्म अधर्म के कार्यों का विभाजन किया है, उनको भाग कर दिया है। जिसे अशुभ कर्मों से दूर रहकर शुभ कर्मों में हम सात्विक कर्मों में हम प्रवृत्त हो सके। दूसरे प्रकार के जो विज्ञ पुरुष हैं वे स्वरूप ज्ञान से संपन्न होते हैं। ऐसे विज्ञ पुरुषों के लिए शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचन प्रयुक्त नहीं है, उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए तो केवल आत्मरति कृष्ण रति शुद्ध जुगल परिचर्या का ही विधान है विज्ञ लोगों के लिए, और अज्ञ लोगों के लिए वो और सब बातें हैं। इसलिए गोस्वामी चरण ने उनके लिए वेदोक्त कर्मों का त्याग नहीं करने के लिए कहा है। आया समझ में? विज्ञ लोगों के लिए नहीं है, अज्ञ लोगों के लिए है। मत करो, अज्ञ लोग वही सब करते हैं, मत करो, राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करो, ये बस। उससे तुम्हारा अधर्म अधर्म का जो पाप है वो भी दूर हो जाएगा। साधक जीवन में जो भी आवश्यक कार्य है भगवत सेवामयी भावना से करो। जो कुछ भी कर्म है, सवेरे से शाम तक जीविका निर्वाह इत्यादि के लिए जो कुछ कर्म करते हैं भगवत भावना से। वर्णाश्रम धर्मनिष्ठ अवस्था में वेद विहित सारे कार्य भी भगवत सेवा की भावना से किए जाएं। गृहस्थ अपने घर में ठाकुर जी की सेवा रखेंगे, धन उपार्जन करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, विषयों की रक्षा करेंगे, गृह निर्माण इत्यादि सभी कार्यों को प्रभु का कार्य समझकर करो। अपने लिए मत करो, प्रभु के लिए करो। अपने को तो केवल प्रभु का सेवक मात्र समझो। भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे सब कीर्तन बतलाए हैं। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहे गए श्राद्ध इत्यादि जो कार्य हैं वैष्णव के, जो श्राद्ध हैं वो भी भगवत सेवा की भावना से करो। उसमें प्रति के सहित मत करो, भगवत सेवा की भावना से। कैसे? हम अपने पितृ का श्राद्ध कर रहे हैं। पितृ का श्राद्ध माने क्या? भगवत निवेदित अन्न को उस परलोकगत व्यक्ति को, उनको भक्ति हो इस भावना से भगवान का निवेदित प्रसाद ही उनको अर्पण कर दो। बस लक्ष्य वैसा ही होना चाहिए। अधिकार संपन्न पुरुषों को, और जो अधिकारी होगा तो वो करेंगे ही नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। गया में जाएंगे तो गदाधर पाद पद्म का दर्शन कर लेंगे, श्राद्ध तर्पण और इत्यादि से उनका कोई भी मतलब नहीं है। उनके लिए तो स्वरूपतः ब्रजवास और जुगल की सेवा परिचर्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। जिन लोगों को ब्रजवास ब्रजमंडल में रहना असंभव है वो मन के द्वारा करेंगे इसके उत्तरूप, फिर मन से करते 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 फिर दूसरे जन्म में ब्रज में ही जन्म हो जाएगा, इस तरह से उनका कल्याण होगा। संसार में अब नंदनंदन को, सचिनंदन को नंदनंदन से अभिन्न समझना चाहिए। संसार में फंसे हुए विमुख जीवों को हरिनाम और अनर्पित उन्नत उज्जवल प्रेम प्रदान करने के लिए नंदनंदन ही सचिनंदन के रूप में राधा भाव और कांति को लेकर के आए हुए हैं। ऐसी दशा में कोई शंका कर सकते हैं केवल मात्र राधा कृष्ण का मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा करने से ही हो जाएगा, मत करो राधा कृष्ण की, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। तो केवल मात्र राधा कृष्ण मिलित विग्रह जो चैतन्य है वो चैतन्य महाप्रभु का आरती करो, उन्हीं का भजन पूजन साधन जो कुछ करना है उन्हीं को करो, कृष्ण की जुगल को करने की जरूरत नहीं है। अथवा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को दोनों को अलग अलग सेवा पूजा करनी उचित है। क्या करना है, महाप्रभु की अलग से सेवा करें अथवा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग से सेवा करें पूजन अर्चन? इस शंका का समाधान करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्ति भाव से स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण कर कहते हैं, जो मैं यद्यपि हूं राधा कृष्ण मिलित तनु, कृष्ण ही हूं, किंतु मैं उपदेश जैसा कर रहा हूं और आचरण कर रहा हूं वैसे करो, क्योंकि वो गुरु तत्व है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जब उपदेश दे रहे हैं जैसा, वैसा ही जुगल का भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जी कृष्ण कृष्ण नाम करो, तो कृष्ण नाम करो, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वैसा ही करो। वे ही गुरु रूप में आए हैं, इसलिए उनका उपदेश पालन करना चाहिए। जुगल सेवा करने से पहले गुरुदेव और गौरांग का अवश्य स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। दूसरी बात एक और है, सचिनंदन गौर हरि की स्वतंत्र सेवा पूजा करने से, स्वतंत्र रूप में यदि करो तो गौर सुंदर और कृष्ण में अबुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी, अभेद बुद्धि नहीं रहती, अभेद बुद्धि रहनी चाहिए। इसलिए उचित है चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, पूजन करो, अर्चन करो, और फिर वही उनकी भजन सिद्धि होने पर राधा कृष्ण में लग जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर के धाम धाम परिक्रमा या कहां पर ऐसा लिखा गया, अभेद बुद्धि होने से कृष्ण की सेवा पूजा में चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी रहती है। इसलिए करने से ऐसा जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जैसा रूप गोस्वामी ने कहा है, जैसा सनातन गोस्वामी ने अर्चन इत्यादि की व्यवस्था की है, जैसा गोपाल गुरु और ध्यानचंद्र जी की भी एक पद्धति है, इन पद्धतियों को लेकर के हमको भजन करना है। गुरुदेव को मुकुंद प्रेष्ठ जानकर, अच्छा यू शुड एक्सप्लेन,
he is Krishna himself.
keeping this in mind, one should worship Radha and Krishna. And also, one should always remember that Sri Gurudev is the most very dear associate of Sri Mukunda. So this is the general translation of the second verse of Manasiksha. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur, in his Bhajan Dharpana Vigyashi Nivruti, Bhajan Dharpana commentary, is explaining the meaning of the verse. In the first verse of Manasiksha, Srila Raghunath Das Goswami prayed to his mind, please, completely give up all types of pride and do engage in one-pointed service to Sri Sri Radha Krishna Yuga. So, if someone will do this, then several doubts may come in one's mind. How is it possible to have one-pointed exclusive shelter and service to Radha and Krishna? Why? Because in this world, if you give up nitya karma, yamagati karma, that means daily and occasional duties which are prescribed in the Vedas, then how will you maintain your life? You cannot maintain your life even for a second without observing the duties which are given in the Shastra. And furthermore, if one will do one-pointed service to the Lord's feet of Radha and Krishna, then what about Sri Chaitanya Mahaprabhu? He is a phoenix in this age of Kali, as if to distribute praying. If you will take shelter exclusively of Radha and Krishna, in what way should one accept Chaitanya Mahaprabhu? Then, that's the second doubt. And then the third doubt is that if one is to engage all the time in the service of Radha and Krishna, then in what way should one render service to Guru or remember the lotus feet of Sri Guru? So, in order to give an answer to these three questions which automatically arise on the basis of the instruction given in the first verse, Srila Raghunath Das Goswami has composed this second verse. So he's giving the answer. First of all,
in brief,
one should not perform the pious and impious activities mentioned in the Vedas. What does this mean? It means that in the scripture, some rules and regulations, what you should do and what you should not do, have been given. But for whom have they been given? There are two types of people. The first category is called the Avya, ignorant people. And the second category, they're called the Vigya, learning people, realized people. So for those who are Avya, ignorant, they have no understanding actually what is their Swarup. They will have to very carefully discriminate between pious and impious activities. Otherwise, they will go down and they will have to suffer. And if they will follow the path of piety, they will be gradually raised up to the platform of Satguru and gradually develop some knowledge and discrimination. So the rules and regulations given in Shruti, it is for them. It is not to go to a Vigya. Vigya means those who are aware of their constitutional identity. So for them, they should simply engage constantly in the service of Radha and Krishna. So, this first line of the verse does not say that you should not perform any external duties in life. But rather, one can perform them, but one should always do it internally meditating on the service of Radha and Krishna. One should never do anything for oneself, but rather performing one's duties without attachment and in a mood of service to Sri Krishna. One can accept the duties whereby one's life will be maintained. If one will not maintain one's life in an appropriate way, then one will not be able to do bhajan. So this first line does not forbid the performance of activities. Srila Gurudev gave an example that it may be that one's parents may pass away and then you have to offer oblations to your deceased forefathers. So you can do it, but you should do everything in a mood of service. For example, someone may go to Gaya to occupy them. Who's going there? Then they want to have the darshan of the footprints of Gaudavacharyas. And in this...
No. Gadad, Bhagavan Gadad.
Gadad of Parvata. There is a Parvata Kirtha in Gaya.
And also they can go to Ishwar Puripad and Madhavanpur Bhajan Sthali.
So in this way, it appears that they're doing karmas, but actually everything they're doing with the meditation connected with the ultimate goal of their life. So this is the answer to the first question. Then the second question, Sachisunam Nandishwara Pratisudatvai Guru Bharata. If one will engage in exclusive service to Radha and Krishna, then in what way is he to accept Sri Chaitanya Mahaprabhu? So one idea may be there, and that is that anyway, Chaitanya Mahaprabhu is not different from Radha and Krishna. So if I just worship Chaitanya Mahaprabhu, then one is automatically worship Radha and Krishna. This idea may come. Otherwise another idea may come. Anyway, Mahaprabhu is Radha and Krishna, so I'll worship Radha and Krishna, and perhaps I should separately do worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in answer to this, Srila Raghunath Das Goswami said, Sakshi Suram Vandishwara Pratisya Satvai Guru Param. Once you accept Sri Chaitanya Mahaprabhu as one's Bhajan Shiksha Guru, in the form of a guru, so the appropriate worship of guru is what? To follow his instructions. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, Vraja Vraja Krishna Seva Vanasa Vrive. Said, chant the names of Krishna, worship Radha and Krishna. So, the worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu, how? By following his instructions. This is best worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise, one may worship Mahaprabhu, but how? Without paid bhav. That means, one should not see any difference whatsoever between Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna. And when one's service to Chaitanya Mahaprabhu becomes virtual, then he will reveal his swarup as Radha and Krishna, and one will be engaged exclusively in their service. This has been described by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Namvit Dham Mahamya. So the final line of this verse is remaining. Srila Gurudev will explain that now.
गुरुदेव को सब समय मुकुंद प्रेष्ठ या कृष्ण प्रेष्ठ समझना चाहिए. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले. तात्पर्य क्या? गुरुदेव भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद के अतिशय प्रिय पात्र हैं. मेरा उद्धार करने के लिए कृष्ण ने अपने परिकर को, नित्य परिकर को भेजा है, ऐसा समझो गुरुदेव को. गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय सखी समझना सर्वांग सुंदर है, सबसे अच्छा है. जब यद्यपि शास्त्रों में आचार्यं मां बीजानिये के अनुसार में गुरुदेव को भगवान का स्वरूप कहा गया है, किंतु हरि भक्ति विलास आदि में भगवान का प्रिय अथवा भगवान के समान परम पूज्य बतलाया है. भगवान के समान गुरुदेव को भी पूजा करनी चाहिए, अन्यथा गुरुदेव को ही भगवान मानकर भगवान की पूजा करने से गुरुदेव की पूजा करने से अपराध होगा. गुरुदेव को भगवान मत समझो, भगवान का प्रिय समझो. साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्री रूप तथा भाव्यते एव सद्वि किंतु प्रभोरीय प्रिय एव तस्य. प्रिय समझो, गुरुदेव ही भगवान है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ब्रह्म है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही सब कुछ है. इसलिए गुरु जी की पूजा करो. जैसे आजकल गुरुदेव ही ब्रह्म का अपर नाम है, परमात्मा का नाम है. बहुत से ऐसे हैं गुरुदेव ही को अपना सब समझ लेते हैं. इसलिए उसे अपराध हो जाएगा। प्रथमम तु गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम्। कुर्मन सिद्धि में आपनोति ही अन्यथा निष्फलम भवे। हरि भक्ति विलास में पहले गुरु की पूजा करो और उसके बाद में मेरी पूजा करो, तब तो सिद्धि होगी और नहीं तो तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि पहले गुरु, इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि परायण दाम्भिक व्यक्ति गुरुदेव को छोड़ करके भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुरुदेव को नहीं मानते, केवल भगवान की पूजा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, गुरुदेव की ही पूजा करते, दोनों नास्तिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वह नराधम भगवान का कोप भाजन हो जाता है। जैसे सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित कर देता है, और वही सूर्य जल से संपर्क न रहे तो कमल को जला देता है, सुखा देता है। नारायण अपि विकृतम जानती जाति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलापे जलादपेतम शोषयति रविर न पोषयति। इसलिए इन हमारे रघुनाथ दास जी के विचारों को मन शिक्षा को लेकर के भजन में हम लोग अग्रसर हैं।
Also on the question of Buddhist Prabhupada with us on Nanguna, always remember that Gurudev is very, very dear associate of Mukunda. Mukunda means Sri Krishna, who gives one liberation from this world. So, therefore, in the Pranam Mantras to our Guru Bhargava, we say, Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale. Who is Guru? He is Krishna Prashta, a very dear associate of Sri Krishna. So, it's very important that the disciple should always maintain the conception that my Guru is Nitya Parikar, an eternal associate of Radha and Krishna. And what kind of eternal associate? He is of the Priya Sakhi, the very near and dear maidservant of Srimati Radhika. So at the time of serving Radha and Krishna, disciples should always keep this conception in his mind. So, although in Shastra it is stated in Srimad Bhagavatam, Acharya Mam Nijaniyat, Krishna said, you should know that the Acharya is my very self. So this does not mean that Guru is Bhagavan. So, many people, there are many movements today where they say Guru is Bhagavan. If you have worshipped Guru, then you have worshipped Bhagavan, because Guru is Bhagavan. Guru is Paramatma. So this is a great offense to worship Guru thinking that he is God. On the other hand, there are many people who directly worship Krishna and they don't accept Guru and they don't give respect to Guru. So Gurudev explains, it's also offensive. So like those who think that Guru is God or those who neglect Guru, both of them are actually Gnostic. They're atheists. They do not accept the Vedic conclusion. So what is the conception of Guru? Saksha Haritvayamash Samasta Shastra Uktasta Thabhavyata Eva Sadvihi Kintu Prabhuya Apri Eva Tasya Vande Guru Sri Charanara Vindam. Guru has all the qualities and should be respected as one gives respect to the Supreme Personality of Godhead. And the reason this respect is given to him is because Kintu Prabhuya Priya is extremely dear associate of Sri Krishna. In this mood, one should worship Sri Guru. One should accept this conception of Sri Guru. So in Hari Bhakti Vilas, there's a verse there, Patamantu Guru Pujam Tatastavakam Archanam. Krishna himself said, first, you should worship Guru, and after that, you should worship me. If you will follow this process, then definitely you will attain perfection. And if you neglect this, then all your worship is fruitless. It will not give any result. So first of all, once you remember lotus feet of Guru and worship Guru, and then so Radha and Krishna under his guidance. There's another verse in the Jayadakyan Samhita that is stated, Shoshayati Ravita Poshayati, that there's a lotus flower. And when the sun shines, the sun, it causes the lotus flower to blossom. As long as the lotus flower is situated in the water. But if you take the lotus flower out of the water, then the rays of the sun will not cause the lotus flower to blossom, but rather, they cause the lotus flower to dry up and wither away and become destroyed. So in this analogy, the lotus flower is the living entity. And the rays of the sun, that is Krishna's mercy. And the water, that is Guru. In other words, if one is in the shelter of Guru, then Krishna, his mercy will cause one to blossom. But if one has not taken shelter of Guru, and he will try to approach Krishna, well, then he must be ruined.
Thank you. Bahut achha. Kal, kal hum log Brahma Harad mein jayenge, जहां अक्रूर जी ने जल के अंदर में कृष्ण बलदेव का दर्शन किया और कृष्ण बलदेव वहीं से लौट गए ब्रज में और वहीं से देवकी नंदन कृष्ण और बलदेव मथुरा में आए। वहीं पर नंद बाबा और गोकुल वासियों ने, ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना धाम दर्शन कराने के लिए आग्रह किया और वहीं पर उन लोगों को उसने अपना धाम दिखलाया। कौन? गोलोक। वो लोग घबरा गए और घबरा करके जब हृदय से निकले तब उन लोगों को ब्रज धाम दिखलाया। उन लोगों को गोकुल में रुचि नहीं रहती, ऐश्वर्यमयी भूमि, हाँ गोलो हम ही की बोली थी, नहीं गोकुल में, गोलोक में उनकी रुचि नहीं रहती, ऐश्वर्यमयी भूमि है। तो कृष्ण ने उनको वो भी दिखलाया तो वो स्थान पवित्र है, हम लोग जाएंगे। विशेष करके भात्रौल पास ही पड़ेगा जहां पर कि द्विज पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने भात दही का कौर और पकवान ले गई थी, किंतु भात ही की वहां पर प्राधान्य है क्योंकि वो भात्रौल उस गांव का नाम पड़ा। कृष्ण भी ब्रह्मा के नौमिड्य थे, अब्रपुषे में क्या कहा है, दही और अन्न का, कृष्ण को दही अन्न पड़ा उनको मिल जाएगा तो वो और कुछ नहीं खाएंगे, रोटी अच्छी नहीं लगती, सूखा है ना रोटी। कौन? भात, ना भात बिहार में भी कहते हैं, ये व्यापक शब्द है,
हिंदी में तो कभी भात नहीं बोलते,
भात बोलते हैं बिहार में, भात दाल, दाल भात, दाल और भात, दाल। तो वहां पर हम लोग जाएंगे, भातरौल में भी जाएंगे जहां पर द्विज पत्नियों ने सुना जे कृष्ण आए हैं, उनके पतियों ने भोजन नहीं दिए कृष्ण के को और बलदेव को, और पत्नियां सुनते ही थाल संपूर्ण जो अपने पतियों के यज्ञशाला में ले जाती उनको वहां न ले जाकर के यहीं पर ले आई। वो क्या है, हिरण्य परिधिम, श्यामंग हिरण्य परिधिम, लसत बन माल्य वरह धातु प्रवाल नटवेश मनु व्रतान से विनस्त हस्त। तो ये सब का कल हम लोग दर्शन करेंगे, आज यहीं तक बस समाप्त।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं विश्वनाथ पत्नियों ने जितना अन्न लिया था छठा तो बहुत थे, उतना अन्न तो कम पड़ जाता, पर कृष्ण ने अपने हर से पुरस्कार कर दिया।
जब ये पत्नियां भी तो कम नहीं थी और कृष्ण के परोसने से
they were not satisfied, they became disturbed. And then again they went down to the water and Krishna brought them back to Gokul. So in this place also Akura, he took bath and had darshan of Krishna Bharata in the form of Narayan and Anantade in the water of Jamuna. And also we go to one place nearby and it's called Bathro. Bathro is the place where the wives of the Yogi Brahmanas, they came and brought many preparations to offer to Krishna. Especially, they bought some rice mixed together with yogurt. This is very nice. Krishna likes it so much. He's not so interested in roti because it's dry. So he likes rice mixed together with yogurt. This has also been mentioned in Bhagavatam. Namidjate prabhapase tarinam varaya kunjabhatam samparas pichala samokaya. We shall have very good. Krishna is carrying rice and yogurt in his left hand when the Brahma saw him. So at that time, the wives of the Brahmanas, they made so many preparations they were supposed to give to the husbands who were performing sacrifice. But they took everything